गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। धरती पर स्वर्ग बसा लेना ओ मानव तुझ पर निर्भर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है। सद्गुण अवगुण के कारण कोई हीरा है कोई पत्थर है।
ओम शांति। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। राजयोग के प्रातःकालीन सत्र में आप सभी शक्तिशाली आत्माओं का हम परमात्मा के घर में हार्दिक स्वागत करते हैं। स्वागत हो, स्वागत हो, स्वागत। आपका कितना ना भाग्य है यहाँ बैठकर आप परमात्मा का ज्ञान सुन रहे हैं। ऐसे में बहुत महत्वपूर्ण विषय सुनाने के लिए हमारे मध्य आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी आए हैं। आप सभी से नम्र अनुरोध है, करतल ध्वनि से हम दीदी का भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो आज का विषय है राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों का विकास। इस विषय पर एक ओर हम देखते हैं दुनिया में बहुत डेवलपमेंट्स हो रहा है। चांद पर भी जाकर प्लॉट्स खरीदना है, लैंड खरीदना है, बहुत प्लान्स करते हैं। नए नए मिसाइल्स आ गए हैं दुनिया में, एक दूसरे को मारने के लिए सारे प्रिपरेशंस भी हम कर चुके हैं और न्यूक्लियर वेपन्स हमारे पास हैं। तो हम सोचते हैं हम शक्तिशाली बनते जा रहे हैं, लेकिन दूसरी ओर आप ज़रा विचार करें कि एक और तो हम एकेडमिकली फिजिकली बहुत आगे बढ़ रहे हैं, दूसरी ओर भय, चिंता, तनाव महसूस हो रहा है। तो ऐसे में क्या हम सचमुच डेवलप्ड है? अपने आप से पूछे, क्या सचमुच हम प्रगति कर रहे हैं? जैसे परमात्मा ने श्रीमद् भगवद गीता में कहा, मैं आऊँगा और मैं तुम्हें उपाय बताऊँगा, तुम्हारी रक्षा करूँगा। तो आज का जो विषय है अष्ट शक्तियों का विकास, इसी विषय से संबंधित है। परमात्मा का दिव्य ज्ञान आज हम डॉक्टर सविता दीदी जी के माध्यम से प्राप्त करेंगे। फिर से हम करतल ध्वनि से दीदी का स्वागत करते हैं। और एक अनाउंसमेंट है तो क्लैरिटी से समझिए, जो भी शिविर में आए हैं, जो पहले दिन सौगात जिन्होंने नहीं लिया है, हाथ उठाए। फर्स्ट डे जो ले चुके हैं वो फिर से नहीं लेंगे, आप याद रखना, ट्रांसलेशन मिल रहा है ना। तो जिन्होंने नहीं लिया है वो दीदी जी के क्लास के बाद यहीं बैठेंगे, जो शिविर में आए हैं वो यहाँ से आप सौगात प्राप्त करेंगे। बाकी बीके गाइड्स टीचर्स बहनों के लिए 11 बजे सौगात मिलेगी, तो इसीलिए आपको बताएंगे कहाँ मिलेगी। तो अभी तो हम क्लास सुनेंगे, बाकी जो भी बच्चे बैठे हैं तो वो कृपया ध्यान दें, दादी जी मीटिंग हॉल में आप अपनी क्लास के लिए जाएंगे। अभी हम परमात्मा का दिव्य ज्ञान आदरणीय डॉक्टर सविता दीदी जी के माध्यम से प्राप्त करेंगे, वो है राजयोग द्वारा अष्ट शक्तियों का विकास इस विषय पर।
ओम शांति। सभी एक बार फिर से बोलेंगे हमारे साथ, ओम शांति। हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं, कल के सेशंस में भी हमने सुना, और जब समस्याएं आती हैं तो उनका सामना करने के लिए, उसे पार करने के लिए हमें शक्ति की आवश्यकता होती है। तो राजयोग अभ्यास से हमें क्या क्या प्राप्तियां होती हैं, लाभ होते हैं, ये तो आप सुन ही रहे हैं, लेकिन उनमें से एक मुख्य है राजयोग द्वारा गुणों और शक्तियों का विकास होता है। यूं तो संसार में अनेक शक्तियां हैं, लेकिन अगर हम मानव जीवन की शक्तियों की बात करें तो दो प्रकार की शक्तियां हैं, बाह्य शक्ति और आंतरिक शक्ति। तो बाह्य शक्ति में है शारीरिक शक्ति, धन की शक्ति, पद की शक्ति, फिर उसमें बहुत क्षेत्र हैं ना, राजनीति की होती है, विज्ञान की होती है, धर्म की होती है ना, ये सब की भी अपनी अपनी शक्तियां होती हैं। तो मनुष्य बाह्य शक्तियों का भी विकास करते हैं, और आंतरिक शक्तियों में है मानसिक शक्ति, बौद्धिक शक्ति, नैतिक शक्ति और चारित्रिक शक्ति। तो राजयोग द्वारा हमारी आंतरिक शक्तियों का विशेष रूप से विकास होता है। तो दुनिया में हम देखते हैं कुछ लोग अपनी शारीरिक क्षमता को बढ़ाकर असाधारण प्रदर्शन करते हैं, तो लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उनका नाम आता है। 500 किलो तक वजन उठा लेते हैं, तो ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल भी जीतते हैं। कई हैं जो बालों से ट्रक खींचकर दिखाते हैं, या दांतों से ट्रक खींच लेते हैं, क्योंकि अपने यहाँ भी एक ब्रह्मा कुमारी बहन है जो बालों से ट्रक खींच लेती है, और उन्होंने कई बार इसका यहाँ प्रदर्शन भी किया है, और उनका गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में नाम है। तो ये शारीरिक शक्ति, फिर धन की शक्ति, पद की शक्ति, ये भी मनुष्य को समाज में स्थान दिलाती है, या जो भी और सत्ताएं हैं उनका अपना महत्व है। लेकिन जब हम आंतरिक शक्तियों की बात करते हैं तो आज बौद्धिक शक्ति के आधार पर ही वैज्ञानिकों ने हमारे लिए इतने आविष्कार किए, इतने साधन हमें मिले हैं। स्टीफन हॉकिंस इस सदी में हुए, अभी कुछ 2-3 वर्ष पहले ही उनका देहांत हुआ है, तो वो एक ऐसे वैज्ञानिक थे जो जीवन भर, जिन्होंने एक अपाहिज का जीवन जिया, क्योंकि उनको एक ऐसी बीमारी थी जो गर्दन से नीचे उनका जो हिस्सा था वो इतना कमजोर था कि वो खुद चल फिर नहीं सकते थे, तो व्हील चेयर पर थे वो। लेकिन उनकी बुद्धि बहुत तीक्ष्ण थी, और उस आधार पर उन्होंने वैज्ञानिक जगत में बहुत अभूतपूर्व योगदान दिया। उनको आइंस्टाइन के समकक्ष माना गया। ऐसे ही जब मानसिक शक्ति का हम विकास करते हैं, हमारा मनोबल ऊंचा होता है, तो मनुष्य के लिए कुछ भी असंभव नहीं होता, वो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने लक्ष्य को हासिल कर लेते हैं। और ऐसे अनेक मिसाल इतिहास में हैं हमारे सामने। अब्राहम लिंकन जो अमेरिका के राष्ट्रपति हुए, उनका जो बाल्यकाल था वो बहुत गरीबी में बीता, उनको पढ़ने के लिए किताबें नहीं होती थी, मांग कर किताब पढ़ते थे। जब उनको लॉ करना था तभी भी उनके पास पुस्तकें नहीं थी, और उन्होंने एक रिटायर्ड जज थे, उनको पता चला कि उनके पास पुस्तकें मिल सकती हैं, तो वो गए उनके यहाँ पर और जो भी उनको आवश्यकता थी, क्योंकि उनकी आयु बहुत अधिक थी, तो उनके लिए उन्होंने वो कार्य किया और फिर खुश होकर के उन्होंने अपनी किताबें उनको दी, और उस आधार पर वो लॉयर बने। और बाद में भी उनके जीवन में बहुत संघर्ष रहे, लेकिन अंततः वो अमेरिका के राष्ट्रपति बने। और जितने भी राष्ट्रपति हुए हैं आज तक, उनमें सबसे चर्चित राष्ट्रपति में अब्राहम लिंकन का नाम आता है। अगर हम अपने भारत के इतिहास में देखें तो भी ऐसे अनेक अनेक महापुरुष हुए हैं। वर्तमान में ही हम देखते हैं हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उनका बाल्यकाल भी कितनी साधारण परिस्थितियों में गुजरा, लेकिन मनोबल ऊंचा था, तो आज वो देश को कुशल नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं। ऐसे ही हमारी जो वर्तमान राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू, उनका भी जीवन बहुत साधारण रहा। एक आदिवासी परिवार में जन्म हुआ, एक गांव में जन्म हुआ, और फिर जीवन अनेक संघर्षों से भी गुजरा, और एक महिला होते हुए भी आज वो देश के सर्वोच्च पद पर हैं। तो ये मनोबल कि मन की शक्ति जो है वो असंभव को संभव करने की ताकत रखती है। जब नैतिक और चारित्रिक शक्ति विकसित होती है तो मनुष्य महान बन जाता है। आज हम जिनको भी महात्मा कहते हैं या महान ताकि श्रेणी में रखते हैं, चाहे वो महात्मा गांधी हैं, महात्मा बुद्ध हैं, तो महान कैसे बने? वो उनका नैतिक बल, उनका चारित्रिक बल, उसके आधार पर वो महान कहलाए। तो राजयोग के द्वारा हमारी इन आंतरिक शक्तियों का विकास होता है। अगर देखें कई बार कई भाई बहने सोचते हैं कि क्या राजयोग करने से हमारे जीवन में कोई सिद्धियां मिलेंगी, कोई चमत्कार कर सकते हैं, क्योंकि हमारी संस्कृति में कुछ संत महात्माएं ऐसे चमत्कारों का प्रदर्शन करते हैं। कोई वो मंत्र जपते हैं, जिस वस्तु की इच्छा करेंगे वो उनके सामने हाजिर हो जाती है, या किसी को भभूत देंगे, कहेंगे कि आप ये भभूत से अपना रोग दूर कर सकते हो, अपना कष्ट निवारण कर सकते हैं, और कई बार सचमुच ऐसा हो भी जाता है। तो ये वास्तव में लेने वाले की गहरी आस्था काम करती है। भभूत से कोई ठीक होता है वो बात नहीं, लेकिन इससे उनको नाम मिलता है, धन मिलता है, प्रसिद्धि मिलती है, पर किसी का जीवन परिवर्तन इससे नहीं होता। और इसीलिए जो सच्चे संत हुए उन्होंने इस तरह की अल्पकाल की सिद्धियों को महत्व नहीं दिया। जैसे स्वामी राम तीर्थ के जीवन की घटना है कि एक बार एक सन्यासी उनके पास आए और वो अपनी सिद्धियों का वर्णन करने लगे कि आपके आश्रम के पास ही जो नदी बहती है इसको मैं चलकर पार कर सकता हूँ, मैं हवा में ऊपर उठ सकता हूँ। तो उन्होंने पूछा कितने साल लगे आपको, तो कहा यही कोई 8-10 वर्ष लगे। फिर उन्होंने कुछ नहीं कहा और कुछ समय के बाद उनका दूध वाला आया जो नदी पार गांव से आता था। तो उन्होंने उन सन्यासी के सामने ही अपने दूध वाले से पूछा तुमने कितने पैसे में नदी पार की, तो उसने कहा 1 पैसे में। उस जमाने में 1 पैसा 2 पैसा चलता था। तो फिर उन्होंने सन्यासी को कहा कि देखो जो काम मेरा दूध वाला 1 पैसे में कर सकता है उसको करने में आपने इतने साल लगा दिए, आपने क्यों सन्यास किया है? उन्होंने कहा भगवत प्राप्ति के लिए। तो बोला यही आपने वो साधना की होती तो अब तक भगवान को आपने प्राप्त किया होता। तो जो सच्चे संत हुए उन्होंने ऐसी सिद्धियों को महत्व नहीं दिया तो राजयोग में भी हम चमत्कार को नमस्कार नहीं करते, लेकिन हमारा जीवन ही चमत्कारिक बन जाए, क्योंकि राजयोग के अभ्यास से हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, हमारे कर्म श्रेष्ठ होते हैं और यही सबसे बड़ी सिद्धि है। तो हमारे जीवन में जो भी कमियां हैं वो अंधकार के समान है, जैसे अंधकार का कोई स्रोत नहीं होता, अंधकार प्रकाश का अभाव है, अगर प्रकाश कर दिया जाए तो अंधकार स्वतः ही समाप्त हो जाता है। तो ऐसे ही जीवन में अगर हम गुणों और शक्तियों का विकास कर लेते हैं तो हमारी ये कमियां अपने आप ही समाप्त होने लगती हैं, हमें उसके लिए कोई अलग से पुरुषार्थ करने की आवश्यकता नहीं होती। और अगर हम वर्तमान पर नजर डालते हैं, वर्तमान में जिस समाज में हम रहते हैं, जहाँ परिवारों में हम रहते हैं, तो क्या स्थिति है, हम सब उसी में ही रहते हैं। तो हम देखते हैं घर घर में स्वार्थ है, क्रोध है, ईर्ष्या है, द्वेष है, नफरत है, वैर भाव है, निराशा है, भय है। तो दूसरे शब्दों में कहते हैं घर घर में रामायण और महाभारत चलती है, क्योंकि हमारे ये जो दो शास्त्र हैं ये मनुष्य की दो कमियों पर बने हैं। रामायण ईर्ष्या की कहानी है, हम सब जानते हैं क्या कहानी है। राजा दशरथ ने राम को राजतिलक की घोषणा की तो केकई की दासी मंथरा उसे ईर्ष्या हुई, क्यों कौशल्या का बेटा राजा हो, मेरी रानी केकई का बेटा भरत राजा होना चाहिए, और उसने वही बात केकई के कान में डाली। हाँ, और उसने ये भी उसको समझाया कि महाराज ने आपको दो वर दिए हैं, ये सही समय है कि आप अपने वर ले लो, और रानी केकई ने अपने वो वर मांगे और राम को वनवास हुआ और पूरी रामायण की कहानी हुई। महाभारत की कहानी भी हम सब जानते हैं, क्या कहानी है, कौरव पांडव दोनों भाई भाई थे, लेकिन कभी भी उनमें प्रेम नहीं रहा, हमेशा ही धन संपत्ति को लेकर, राज्य को लेकर उनमें द्वेष रहा, और उसमें चिंगारी डाली द्रौपदी के दो शब्दों ने। कौन से दो शब्द कहे उसने दुर्योधन को, क्या कहा उसने, अंधे का बेटा अंधा। हाँ, तो उसने हंसी में ये बात कही, लेकिन उसको इतना अपमान महसूस हुआ कि उसने उसी घड़ी निश्चय कर लिया कि मुझे अपने अपमान का बदला लेना है, और इसीलिए उसने जुए का षड्यंत्र रचा और ना सिर्फ पांडवों को जुआ खेलने के लिए मजबूर किया, लेकिन धोखे से उनको जुए में हराया, अपने अपमान का बदला लिया। पांडवों को वनवास हुआ 13 वर्ष, और जब लौट कर आए तो क्या कहा, राज्य तो क्या, मैं सुई की नोक के बराबर भी जमीन नहीं दूंगा, और इसी को लेकर महाभारत का युद्ध हुआ और परिणाम हुआ पूरे कुल का विनाश। यही है ना महाभारत की कहानी। तो आज हम देखते हैं घर परिवारों में ईर्ष्या है, एक दो को देख नहीं सकते, फिर भाई भाई में द्वेष है, और ज्यादा धन संपत्ति को लेकर ही होता है, और द्रौपदी जैसे एक शब्द तो क्या, हम कितने ही शब्द सारे दिन में बोलते हैं जिससे किसी का अपमान हो जाता है, किसी को दुख पहुंचता है। तो ऐसे कौन से शक्तियों की कमी है, वो गुण नहीं है हमारे अंदर जो आज घर घर की नरक के समान दशा है, और उन्हीं का हम विकास करेंगे तो वही घर घर स्वर्ग बन सकता है। तो आप चित्र में देख रहे हैं अष्ट शक्तियां, ये मुख्य शक्तियां हैं, और भी शक्तियां हमें मिलती हैं, तो ये शक्तियां इसमें समेटने की शक्ति, सहन करने की शक्ति, समाने की, निर्णय करने की, परखने की, सामना करने की, सहयोग करने की, और विस्तार को सार में लाने की, अष्ट शक्तियां हमें राजयोग द्वारा प्राप्त होती हैं। तो उसमें एक शक्ति है सहन करने की शक्ति। आज हम किसी की एक छोटी बात को सहन नहीं कर सकते। किसी ने एक कहा तो हम दो कहेंगे, दो कहा तो चार, चार कहा तो आठ। ईंट का जवाब हम पत्थर से देते हैं और फिर हम सोचते हैं कि हम क्यों सहन करें। जब हमने गलती की ही नहीं है तो हम क्यों चुप रहें, और अगर हम चुप रहेंगे तो गलती हमारी ही मानी जाएगी, तो मैं कोई कमजोर थोड़े ही हूं। और फिर परिणाम क्या होता है, छोटी छोटी बातें कई बार विनाशकारी हो जाती हैं। कैसे समाचार होते हैं अखबारों में, ऐसे एक समाचार था कि एक दो बहनें आपस में, उनकी बोलचाल बंद थी, कोई बात को लेकर नाराजगी थी दोनों में, तो बोलते ही नहीं थे। लेकिन जो बड़ी बहन की बेटी थी उसे अपनी मौसी से प्यार था, तो और उसको ये भी पता था कि दोनों आपस में बातचीत नहीं करते, तो माँ को पूछे बिना वो अपनी मौसी को मिलने चली गई। और इधर माँ को पता चल गया कि ये वहाँ गई है, तो जब वो वापस लौट कर आई तो इतना गुस्सा उसको कि उसने उसको इतना पीटा कि उसकी मृत्यु ही हो गई। तब बताओ, बात तो कोई बड़ी नहीं है भाई, आपकी आपस की बोलचाल बंद है, लेकिन इतना गुस्सा होता है मनुष्य को जब वो सहन नहीं कर सकता, तो उसका विवेक नष्ट हो जाता है, उसको पता ही नहीं चलता कि मैं क्या कर रहा हूँ। इसीलिए मनोवैज्ञानिक कहते हैं, एंगर इज टेम्परेरी इनसैनिटी, थोड़े समय का पागलपन है। जैसे पागल व्यक्ति को ये भान नहीं होता कि मैं क्या कह रहा हूँ, क्यों कह रहा हूँ, मुझे ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, ऐसे ही क्रोध में मनुष्य की स्थिति होती है कि हम ऐसे ऐसे शब्द बोलते हैं जो हमेशा दूसरों को दुख पहुंचाते हैं, और उसका असर हमारे संबंधों पर आता है, संबंधों में प्रेम खत्म, और फिर संबंध कई बार टूट भी जाते हैं। तो क्यों गुस्सा करते हैं हम, क्यों गुस्सा करते हैं, किसी ने मेरी बात नहीं मानी। ज्यादातर आम कारण होता है कि जैसा हम कहते हैं वैसा दूसरा सामने वाला नहीं कर रहा है, या जैसा व्यवहार हम चाहते हैं वैसा हमें नहीं मिल रहा, तो हम गुस्से में आते हैं। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति ये समझता है कि हर एक व्यक्ति का व्यक्तित्व, विचार, भावनाएं अलग अलग हैं। जैसा हम सोचते हैं जरूरी नहीं है कि सामने वाला भी वैसा ही सोचता है, उसकी सोच हमसे अलग हो सकती है, तो हम उनको भी समझने की कोशिश करते हैं। फिर जिनसे हम अपेक्षा करते हैं कि इनको मेरी बात माननी चाहिए, चाहे आपके परिवार के हैं, चाहे आप जहां काम करते हैं, वो 10 में से 9 बार आपकी बात मानते ही हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं मानते हैं। कभी एक बार ऐसा होता है जब उन्हें लगता है कि वो सही हैं, आपको उनकी बात समझनी चाहिए, तो ये भी हो सकता है कि कभी हम गलत हों, या कभी हमें दूसरों की बात को भी समझना है। लेकिन यहाँ पर फिर अहम आ जाता है, और अहम के कारण हम दूसरों की सही बात को भी गुस्से से कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। फिर काम कराने के लिए गुस्सा करते हैं कि अगर हम गुस्सा नहीं करेंगे तो लोग काम ही नहीं करते हैं। अच्छा, गुस्से से हम काम कराते हैं तो काम हो जाता है, ऐसा नहीं कि नहीं होता है, क्योंकि सामने वाले को भय होता है और वो भय के कारण चुप हो जाते हैं। उनको पता है अगर कुछ बोलेंगे तो हमारे भविष्य पर उसका बुरा असर पड़ सकता है, तो वो चुप रहते हैं। लेकिन उनके मन की भावनाएं हमारे प्रति बदल जाती हैं। जो स्नेह सम्मान होना चाहिए वो तो रहेगा नहीं, और कहीं ना कहीं मन में बदले की भावना है, तो वो अवसर ढूंढते हैं, और जब भी उनको अवसर मिलेगा वो हमारे लिए समस्या जरूर पैदा करेंगे, तो इसके भविष्य परिणाम बुरे हो सकते हैं। और वो दिल से काम नहीं करेंगे तो जैसा काम हम चाहते हैं वैसा काम होगा नहीं। फिर कोई हमसे गुस्से से काम कराए तो हमें पसंद आता है, हम सोचते हैं काम तो करना है, लेकिन थोड़ा प्यार से तो बोल सकते हैं, थोड़ा रिस्पेक्ट से तो बोल सकते हैं। तो जो व्यवहार हम अपने लिए पसंद करते हैं, ऐसा ही व्यवहार सभी को अपने लिए पसंद होता है। फिर बच्चों पर गुस्सा करते हैं, बच्चे कहना नहीं मानते, बच्चे पढ़ते नहीं, तो आपने बच्चों को गुस्सा किया तो बच्चे भी भय के कारण वो करते हैं जो आप कहते हैं, या पढ़ने लगते हैं किताब उठाकर, लेकिन गुस्से में आकर हम अच्छी भाषा भी बोलते हैं, है ना, ये नालायक कभी सुधरने वाला नहीं, मानो, है ना, जो भी उस समय हमारे मुंह में आया हमने वो कहा उनको। तो बच्चे ने आपको खुश करने के लिए किताब खोली, लेकिन वो सचमुच पढ़ नहीं रहा है, वो सोच रहा है मेरे माता जी ने मुझे या मेरे पिताजी ने मुझे ऐसा ऐसा बोला। और अगर हम बार बार ऐसा बोलते हैं तो बच्चे वैसा ही बनकर दिखा देते हैं, फिर वो हमसे सीखते हैं। अगर हम उनको गुस्से से करवाते हैं तो वो थोड़ा बड़े होने पर उनको पता है अपनी बात मनमानी है तो गुस्सा करो, तो वो पलट कर हम पर गुस्सा करने लगते हैं। और फिर हम सोचते हैं बच्चे क्या सीख रहे हैं, तो क्या सीख रहे हैं, कौन सिखा रहा है, कौन सिखा रहा है, हमारा ही आचरण, जो हम उनके सामने आचरण करते हैं वही बच्चे सीखते हैं। तो ये सही तरीका नहीं है। सही तरीका क्या है? अगर आप चाहते हैं कि बच्चे आपकी बात माने तो उनको ये बताइए उन्हें ऐसा क्यों करना चाहिए, क्योंकि आज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की एज में बच्चे हर बात के पीछे कारण जानना चाहते हैं, और अगर आप उनको कन्विंस कर पाएंगे तो वो जरूर आपकी बात मानेंगे। पर उसके लिए हमें उनको समय देना पड़ेगा, धीरज रखना पड़ेगा, थोड़ा प्रेम से समझाना पड़ेगा। एक बार में नहीं समझ में आएगा तो दो बार भी समझाना पड़ेगा, तीन बार भी समझाना पड़ेगा, पर ना तो हमारे पास इतना टाइम है और ना ही हमारे पास इतना धैर्य है आज के जमाने में। तो वो एक बार हमसे पूछते हैं, हमने बताया, और दूसरी बार पूछेंगे तो फिर हम गुस्से से ही बात करते हैं। तो यहाँ पर हमें ही परिवर्तन करने की जरूरत है। फिर कई बार कोई हमारी निंदा करता है, कमी निकालता है, क्योंकि जो हमारे आसपास के लोग हैं वो हमारी कमियों को जानते हैं, और जैसे ही उनको मौका मिलता है वो हमें छोड़ते नहीं, आप ऐसे हो, आप ऐसा करते हो, जो भी। तो इंसान को अपनी निंदा सुनना पसंद नहीं होता, तारीफ सुनना पसंद होता है। पर एक कहावत है, निंदा हमारी जो करे मित्र हमारा सोई। तो निंदा करने वाला हमारा मित्र हो सकता है? हो सकता है? क्या कहेंगे? हो सकता है? कैसे? कैसे? वो हमें हमारी कमी बता रहा है, लेकिन कब मित्र लगेगा? जब हम उसको पॉजिटिव लेंगे, नहीं तो निंदा करने वाला हमें दुश्मन ही लगता है। तो जो निंदा करता है, क्योंकि इंसान का ये स्वभाव है कि उसे अपनी कमी खुद दिखाई नहीं देती, दूसरे उसे बताते हैं कि आपके अंदर ये कमी है, पर कहने वाला उसे थोड़ा बड़ा चढ़ाकर बोलता है। पर अगर वो 1% भी है हमारे अंदर और हम उसे दूर करेंगे तो जीवन में हम आगे बढ़ेंगे, हमारी प्रगति होगी। मानो आप ऑफिस में जाते हैं, रोज टाइम पर जाते हैं, अपना काम बहुत जिम्मेवारी से करते हैं, समय पर पूरा करते हैं, लेकिन कोई कारण से 2-3 दिन आपका काम ऊपर नीचे हो गया, तो जो आपका क्रिटिक होगा ना, उसको मौका मिल जाता है, वो कहेगा ये है ही लापरवाह, ये हमेशा ही ऐसा करते हैं। अब आप सोचेंगे हम हमेशा तो ऐसा नहीं करते, ये तो ये कारण बना इसलिए ऐसा हुआ। तो फिर अगर 1% भी हमारी लापरवाही है और हम उसे दूर करेंगे तो सामने वाले को कभी बोलने का मौका नहीं मिलेगा। तो इसीलिए अगर ऐसा है तो हम उसे स्वीकार करके अपने आप को चेक करके चेंज कर लें। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि वो कमी हमारे अंदर है नहीं, जब हम देखते हैं कि ये जो कबात कही जा रही है वो नहीं है, लेकिन कोई गलत फहमी के कारण या ईर्ष्या के कारण हमें नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। दुनिया में ऐसा भी होता है कि आपके लिए गलत गलत बातें आपको किसी की नजरों में गिराने के लिए करते हैं, और जब हमें समझ में आता है कि ऐसा कुछ नहीं है तो फिर हम उसे स्वीकार नहीं करें। स्वीकार नहीं करें यानी अपने मन पर हम वो बात ले नहीं, क्योंकि जब वो कमी है ही नहीं हमारे अंदर तो हम क्यों सोचें उसके बारे में। नो वन कैन हर्ट यू विदाउट योर परमिशन। हम ना चाहें तो कोई हमें दुख नहीं पहुंचा सकता। महात्मा बुद्ध एक बार एक स्थान पर गए, वहां पर उनका एक विरोधी रहता था, तो जब उसको मौका मिला तो उसने जाकर के उनके सामने वो सब बोलना शुरू कर दिया। तो महात्मा बुद्ध ने सुना तो वो समझ गए कि ये सब इसकी गलत फहमी है, इसको सच्चाई मालूम ही नहीं है, तो वो चुप रहे। जब उसने बोलकर पूरा किया तो भी वो शांत बैठे थे और मुस्कुरा रहे थे, तो उसने सोचा कि कुछ जवाब देंगे, लेकिन जवाब नहीं दिया। तो उसने आगे जाकर बोला, आपने सुना नहीं मैंने आपको क्या कहा? तो फिर महात्मा बुद्ध ने उसको मुस्कुराते हुए जवाब दिया, देखो भाई, अगर आप किसी को कोई चीज देते हो और सामने वाला उसे नहीं लेगा तो वो कहाँ रहेगी? तो समझ गया वो कि इन्होंने मेरी एक भी बात पर ध्यान नहीं दिया, इसलिए इनके ऊपर कोई असर आया नहीं। तो गलत सलत बातों पर हमें ध्यान ही नहीं देना है। जब वो है ही नहीं, सच है ही नहीं, तो क्यों उस पर हमें ध्यान देना और हम दुखी हों उसको लेकर के। पर कई बार क्या होता है, हम बिना सोचे समझे रिएक्ट करते हैं, फिर बाद में पछताते हैं क्यों ऐसा बोला, क्यों ऐसा किया। तो यहां पर हम उसको थोड़ा समय के लिए पोस्टपोन कर दें, यानी हम अपनी बात कहेंगे लेकिन तुरंत नहीं, कुछ मिनट के बाद, थोड़ा समय जाने दो। तो उसमें क्या होता है, हमारी बुद्धि चलती है और हमें समझ में आ जाता है कि सारी गलती सामने वाले की नहीं, कुछ मेरी भी गलती है, कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि दोनों की गलती है, बात ही खत्म हो जाती है। पर अगर लगता है नहीं, सामने वाले की गलती है और इनको बताना चाहिए, नहीं बताएंगे तो फिर से वही गलती करेंगे, तो फिर हम क्या करते हैं, फिर हम क्या करते हैं, तब तक हमारा आवेश कम हो जाता है और वही बात हम शांति से कहते हैं, थोड़ा अच्छे शब्दों में कहते हैं, तो वो फिर सामने वाला स्वीकार करता है। अगर हम गुस्से में बोलते हैं तो गुस्सा गुस्से को जन्म देता है और उसकी गलती होगी तो भी वो मानेगा नहीं और ही हमारी समस्या बढ़ जाएगी। गुस्से से कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। एक बार ऐसे ही पति पत्नी थे, दोनों ही गुस्से वाले स्वभाव के, एक गुस्से वाला हो और दूसरा शांत हो तो स्थिति इतनी नहीं बिगड़ती, लेकिन दोनों ही गुस्से वाले थे तो घर में रोज कलह होता था, कोई चुप होने को तैयार नहीं। अब पति काम पर चले जाते थे, घर में पत्नी दुखी हो जाती थी बहुत। तो उसकी एक पड़ोसन आई और उसने कहा कि देखो बहन, मैंने अपने घर में कथा रखी है, आप कथा में आना। तो वो गई कथा में, तो देखा एक पंडित जी कथा कर रहे हैं, तो वो बहुत अशांत थी। तो उसने मन ही मन सोचा कि मैं ये पंडित जी से आज उपाय पूछूंगी कि मेरे घर में शांति कैसे हो। तो जब कथा पूरी हुई तो उसने वो पंडित जी से बात की, तो पंडित जी ने कहा कि देखो बहन, मैं तुम्हें उपाय बता सकता हूं लेकिन मेरी एक शर्त है, मैं जो कहूंगा वो आप करोगी। उसने कहा जरूर करूंगी, तभी तो पूछ रही हूं। उसने कहा नहीं, वादा करो आप मेरे से, मैं जो कहूंगा वो आप करोगी। कहा मैं वादा करती हूं, आप जो कहेंगे वो मैं करूंगी। तो उन्होंने पानी की एक बोतल मंगाई और उसे दिया, कहा देखो जब आपके पति गुस्सा करते हैं इसमें से कुछ घूंट पानी आप अपने मुंह में रखना, पानी पीना नहीं, पानी मुंह में रहेगा। अब वो समझ गई, पर अब वादा ही करवा लिया था उन्होंने, तो चुपचाप उसने बोतल पकड़ी और घर चली गई। अब घर में तो रोज की बात थी, पति ने कोई बात पर बोलना शुरू किया, अब आज ये वादा करके आई थी इसलिए इसने पानी मुंह में रखा, मुंह में पानी था तो बोल नहीं सकती थी, चुप थी। तो तो पति को लगा इसको क्या हुआ है, रोज तो बराबर बोलती है, आज ये शांत है। थोड़ा और जोर जोर से बोला कि कुछ जवाब देगी, लेकिन फिर भी उसने कोई जवाब नहीं दिया क्योंकि उसके मुंह में पानी था। फिर दूसरे दिन भी हुआ ऐसा, आज भी वो चुप थी क्योंकि वादा किया हुआ था, तो उसने मुंह में फिर पानी रखा। तो जब दो तीन बार ऐसा हुआ तो पति को विचार चलने लगा, क्या इसने अपने आप को बदल लिया है, सचमुच बोलती नहीं है। और उसने जानबूझ के भी ट्राई किया लेकिन फिर भी वो नहीं बोली। तो फिर उनका अपने ऊपर ध्यान गया कि मैं शायद छोटी छोटी बातों में ज्यादा गुस्सा करता हूँ, मुझे भी इतना नहीं बोलना चाहिए, और घर में शांति हो गई। तो वो बहन बहुत खुश हुई, गई वो पंडित जी के पास कि पंडित जी आपने जो उपाय बताया उससे मेरे घर में शांति हो गई, मैं आपका शुक्रिया अदा करने आई हूँ, लेकिन वो पानी जो आपने दिया था वो खत्म हो गया है। तो उसने कहा वो पानी कोई मंत्र वाला पानी नहीं था, वो पानी सिर्फ आपको सिखाने के लिए था कि जब आपके पति गुस्सा करते हैं उस समय आप शांत रह जाओ। तो देखो आप शांत रह गई तो कितने अच्छे परिणाम मिले, हमेशा ही आप ऐसे रहो आपके घर में सदा शांति रहेगी। तो कई कहते हैं बहन जी ये कहानी तक ठीक है ना, सचमुच जब हमारे साथ ऐसा होता है तो हम चुप नहीं रह सकते। हाँ, तो सहन करने का मतलब क्या है, कोई हमारे ऊपर गुस्सा करे या कोई हमारी ग्लानी करे या कोई हमसे अच्छा व्यवहार नहीं करे तो भी हम चुप रह सकते हैं, शांत रह सकते हैं। तो आप क्या समझते हैं, रह सकते नहीं रह सकते, रह सकते नहीं रह सकते हैं? जो समझते हैं हम रह सकते हैं वो हाथ उठाइए, कई तो रहते भी होंगे, देखिए कितने हाथ उठा रहे हैं है? तो आप अपने लिए ताली बजाइए। तो हम सचमुच ऐसा कर सकते हैं क्योंकि हमारी चॉइस होती है। हाँ, अभी जो उनको ट्रांसलेशन मिला वो अभी हाथ उठा रहे हैं। हाँ, तो ये हमारी चॉइस होती है कि हम किस परिस्थिति में कैसा रिस्पॉन्स करते हैं। तो हम बिल्कुल शांत रह सकते हैं, और आप यहाँ आए हैं इस शिविर में, और जो आपने हाथ उठाया है इसको याद रखना, क्योंकि इतना भी परिवर्तन हम करके यहाँ से जाएंगे तो ये इस शिविर में आने की सफलता है ना? तो इसीलिए आप आज का दिन कि हमने वहाँ हाथ उठाया था और अपने घर में हम हर स्थिति में हम शांत रहेंगे, यानी हम उस बात को पहले पालन करेंगे। जैसे कल भी हमने सुना ना, स्व परिवर्तन से ही हम दूसरों में परिवर्तन ला सकते हैं। जैसे वो बहन शांत रही तो पति में भी परिवर्तन आ गया, लेकिन थोड़ा धीरज रखना पड़ा, एक ही बार में नहीं हुआ लेकिन कई बार में उसको समझ में आ गई वो बात। तो ये सहन करने की शक्ति आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं, जब पेड़ फलों से लगता है तो बच्चे उसको पत्थर मारते, लेकिन फिर भी उसको पत्थर के बदले क्या मिलता है, मीठा फल। तो प्रकृति में भी ये गुण है कि वो पत्थर की चोट सहकर मीठा फल दे सकती है। तो क्या इंसान जो भगवान की सर्वश्रेष्ठ रचना है वो ऐसा व्यवहार नहीं कर सकता कि उसके साथ कोई कैसा भी करे लेकिन फिर भी वो अच्छा व्यवहार करे, उसका भला करे, बुरा की बजाय भला करे? कर सकते हैं। जितने भी महापुरुष हुए उनके जीवन की यही विशेषता थी कि उन्होंने कभी भी टिट फॉर टैट नहीं किया, जैसे को तैसा नहीं दिया, लेकिन किसी ने कैसा भी किया उन्होंने प्रेम दया क्षमा करुणा का ही व्यवहार किया। और यही कारण है कि वो समाज में इतने बड़े बड़े परिवर्तन ला सके। आज ईसा मसीह को लोगों ने सूली पर चढ़ाया, लेकिन उन्होंने क्या कहा, हे पिता तू इन्हें क्षमा करना, ये नहीं जानते ये क्या कर रहे हैं। तो क्षमा करना कहा ना, इतना उनको कष्ट दिया जा रहा है, तो ये नहीं कहा हे भगवान तू इनको सजा देना, कह सकते थे क्योंकि भगवान के पुत्र थे। आज हमारे साथ कोई बुरा करता है तो हम क्या कहते हैं, मन ही मन उसको कितनी बद्दुआएं, भगवान को भी बोल देते हैं भगवान तू उसका ऐसा कर देना। तो जब हम ऐसा कहते हैं लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं कहा। और यही कारण है कि आज जितने भी गिरजाघर हैं उसमें ईसा मसीह की भगवान के रूप में प्रेयर होती है ना। ऐसे गुणों ने उनको भगवान का दर्जा दिया, क्योंकि ये भगवान के गुण हैं, प्रेम, दया, क्षमा, करुणा, ये किसके गुण हैं? भगवान इन गुणों का सागर है। ऐसे ही हमारे देश में भी ऐसे कई महापुरुष हुए जिनके अंदर ऐसे गुण थे। संत एकनाथ थे, महाराष्ट्र के संत, उनके लिए प्रसिद्ध था इनको गुस्सा नहीं आता है। तो एक बार वो हरिद्वार आए गंगा स्नान के लिए और एक व्यक्ति को ये मालूम था, तो उसने सोचा इनकी परीक्षा लेते हैं, इनको गुस्सा आता है या नहीं आता, मैं इनको गुस्सा दिलाने की कोशिश करूंगा। तो जब वो नहाकर आए तो उसने उसके ऊपर थूक दिया, वो ऊपर छज्जे पे खड़ा होके थूक दिया। तो उन्होंने देखा भी नहीं किसने थूका, वो फिर से नहाने चले गए, फिर नहाकर आए, फिर उसने थूक दिया। ऐसे कितनी बार उसने थूक दिया और उन्होंने ना तो देखा ना कुछ बोला। तो वो नीचे उतर के आया और उनके सामने खड़ा हो गया कि आपके ऊपर थूकने वाला मैं हूं, आपको मुझे कुछ कहना है? तो उन्होंने कहा, हाँ भाई, अब तुम मेरे सामने आ ही गए हो तो मैं तुमको धन्यवाद देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं इतनी दूर महाराष्ट्र से यहाँ गंगा में स्नान करने आया, आज तुम्हारे कारण मैंने इतनी बार स्नान किया, नहीं तो मैं एक ही बार स्नान करके चला जाता। तो देखो, सोच ही अलग है। हाँ, कोई बुरा कर रहा है, उसमें भी उसने क्या निकाल लिया अपना, भला क्या हो रहा है? और कोई हमारे ऊपर थूक दे तो हम क्या करेंगे? अच्छी तरह से बता देंगे थूकने का मतलब क्या होता है, है ना? तो ये अंतर होता है जिनके अंदर आध्यात्मिक पावर होती है, कि वो अलग तरह से ही सोचते हैं, एक आम इंसान की तरह वो नहीं सोचते, और इसीलिए वो सहन करने की शक्ति बढ़ जाती है। जैसे हम राजयोग का अभ्यास करते हैं तो परमात्मा जो प्रेम के सागर हैं, दया के सागर हैं, क्षमा के सागर हैं, शांति के सागर हैं, जब हम उनसे योग लगाते हैं तो ये गुण हमारे अंदर विकसित होने लगते हैं। और जब ये गुण होते हैं तो कोई व्यक्ति गलती करता है, किसी के अंदर कमी होती है, उसको सहन करना हमारे लिए मुश्किल नहीं होता, क्योंकि दुनिया में भी हम देखते हैं, आप अपने जीवन में भी देखेंगे, जिससे प्रेम होगा ना आपको, वो कितनी भी गलती करे, उसके अंदर क्या भी कमी हो, वो हमें कमी नजर आएगी नहीं, उसकी गलती हमें गलती लगेगी ही नहीं। होता है ऐसा, माँ को बच्चे से प्रेम है, कितनी गलतियां करते रहते बच्चे, फिर आप माफ कर देते नहीं कर देते ना, क्या सोचते हैं, जैसा भी है मेरा बच्चा है, ऐसे ही सोचते हैं ना। हाँ, किसी से प्यार है, उसके लिए कोई कुछ बोलेगा ना तो सुनने को तैयार ही नहीं, आप मेरे से उसके बारे में बात ही मत करो, क्योंकि प्रेम है। तो प्रेम में वो सहन शक्ति अपने आप बढ़ जाती है, और अगर प्रेम नहीं है तो किसी की छोटी सी भी गलती हमें कितनी बड़ी लगती है। तो ये अंतर होता है। तो इसीलिए मानवता के प्रति प्रेम, ऐसे नहीं दो चार छह लोगों के लिए ही मेरा प्रेम है, लेकिन पूरे मानवता के लिए जब हमारे अंदर वो प्रेम होता है, क्षमा का भाव होता है, शांति की शक्ति है हमारे अंदर, तो हमारी सहन शक्ति बहुत बढ़ जाती है। फिर दूसरी है समाने की शक्ति। आप यहाँ चित्र में देख रहे हैं समुद्र है, समुद्र में लहरें उठती रहती हैं, लेकिन भीतर में सागर बिल्कुल शांत होता है। तो हमारे जीवन में भी समस्याएं आती रहती हैं, उतार चढ़ाव आते रहते हैं, निंदा स्तुति, मान अपमान, जय पराजय, हानि लाभ, सुख दुख, इनसे हमारा जीवन गुजरता है, है ना? कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी हमारी प्रशंसा होती है, कभी हमारी निंदा भी होती है, कभी हमें लाभ होता है, कभी हमें हानि भी होती है। लेकिन एक योगी हर स्थिति में शांत होता है, संतुलित रहता है। ये जितने भी अति की स्थितियां हैं, ये मनुष्य के मन को विचलित करने वाली होती हैं ना। लोग सुख में, सफलता में, अहंकार में आ जाते हैं, और दुख में, असफलता या हानि में बहुत निराश हताश हो जाते हैं, इतने ज्यादा कि कई तो अपना जीवन ही समाप्त कर लेते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। लेकिन एक योगी क्या जानता है, ज्ञान से योग से उसके अंदर ये शक्ति है और उसे पता है कि हर स्थिति परिवर्तनशील है, ना सुख सदा रहने वाला है और ना ही दुख सदा रहने वाला है, और इसीलिए उसका चित्त सदा हर स्थिति में स्थिर रहता है। वो दुख में बहुत निराश नहीं होता और सुख में बहुत गर्व या अहंकार नहीं करता है। फिर आप देख रहे हैं चित्र में, सागर में अनेक नदियां जल लेकर के आती हैं, सब समा जाता है उसके अंदर, कभी भी सागर अपना किनारा नहीं छोड़ता, और जो जल पड़ता है उस समय सागर के अंदर सबसे गंदा जल होता है, क्योंकि नदी सारी गंदगी लेकर आती है, तो सागर क्या करता है, जो हल्की वस्तु है उसको उठाकर लहरें बाहर फेंक देती हैं और जो भारी वस्तु है वो सागर के तले में चली जाती है, लेकिन सागर की सतह हमेशा स्वच्छ रहती है। ऐसे ही योगी का जीवन होता है। इस संसार की कितनी अच्छी बुरी बातें हम देखते सुनते हैं, लेकिन हम सब ग्रहण नहीं करते। हम क्या समाएंगे अपने अंदर, जो हमारे लिए उपयोगी है, जो हमारे लिए सार्थक है। कबीर दास जी ने कहा, साधु ऐसा चाहिए जैसा सुख सुहाए, सार सार को गही दिए थोथा दे उड़ाए। यानी एक सज्जन व्यक्ति का स्वभाव कैसा होता है, जैसे अनाज साफ करने वाला सुख, वो कचरे को फेंक देता है और अनाज को रख लेता है, क्योंकि अनाज उपयोगी है, कचरा तो बेकार है। तो इस संसार में कचरे जैसी बातें जो हमारे सामने आती हैं, उन्हें हमें ग्रहण करना है नहीं, छोड़ देना है। और दूसरों की भी कमियों की बातें, उन पर भी हमें ध्यान नहीं देना। हर एक के अंदर गुण भी हैं, तो हम गुण ग्राही बने, गुणों को ग्रहण करेंगे तो एक दो के प्रति स्नेह सम्मान हमारा बना रहता है, तो संबंधों में हम एडजस्ट कर पाते हैं। फिर समाने की शक्ति का एक रूप ये भी है कि मानो कोई मेरे फ्रेंड हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम है, वो अपनी बात हमें कहते हैं क्योंकि वो हमसे सहयोग चाहते हैं। फिर सारी बात सुनाकर कहते हैं, देखो ये मेरी पर्सनल बात है, आप किसी को मत कहना। हम भी विश्वास दिलाते हैं, हाँ हम नहीं कहेंगे, लेकिन होता क्या है, हमारा कोई अपना है जिसको हम सुनाते हैं और फिर उसको वही कहते हैं तुम किसी को मत कहना। फिर उसका भी कोई अपना होता है, वो उसको सुनाते हैं, कहते हैं तुम किसी को मत कहना। अब क्या होता है, जो बात नहीं फैलनी चाहिए वो फैलती है, और कैसे फैलती है, जैसी बात है वैसी नहीं फैलती, हर एक सुनने वाला अपना अपना भी मिक्स करता है उसके अंदर, तो कई बार अर्थ के अनर्थ हो जाते हैं, और जब घूम फिर कर उस तक पहुंचती है तो कैसा लगेगा कि मैंने इनके ऊपर इतना विश्वास किया और मुझे धोखा मिला। तो वर्षों पुरानी दोस्ती टूट सकती है, संबंधों में कड़वाहट आ जाती है। तो हाँ, एक कहानी से हम इसको समझेंगे कि एक बार एक पंडित थे, उन्हें गांव से शहर जाना था, तो उन्होंने अपनी पत्नी को कहा कि मेरे लिए भोजन दे देना, क्योंकि हो सकता है आने में देर हो जाएगी। तो उसने टिफिन बना दिया। अब रास्ते में एक पेड़ के नीचे वो खाने के लिए बैठे, तो जैसे ही उन्होंने खाना लगाया, वो पेड़ की डाली पर एक पक्षी बैठा था, उसने बीट कर दी और उनके खाने में वो बीट पड़ गई। अब वो पंडित थे, उनके लिए शुद्धि का महत्व था, तो उन्होंने खाना छोड़ दिया। फिर सोचा आज नहीं जाते हैं शहर, फिर कभी जाएंगे। घर आ गए वापस, पत्नी ने पूछा आप तो शहर गए थे, इतना जल्दी कैसे आ गए। तो बताना नहीं चाहते थे, उनको अपनी पत्नी का स्वभाव मालूम था कि इसको बताया तो पूरे गांव को पता चलेगा, तो थोड़ा टालने की कोशिश की, लेकिन वो बार बार पूछने लगी। तो फिर उन्होंने बता दिया कि मैं जब खाने बैठा तो मेरे खाने में पक्षी की बीट पड़ गई, तो फिर मेरा मन का विचार बदल गया, अब कभी और जाएंगे, पर तू ये बात किसी को कहना मत। उन्होंने थोड़ा जोर देके उसे कहा, उसने कहा ठीक है नहीं कहूंगी। दूसरे दिन वो कुएं पे पानी भरने गई, तो इंसान आदत से मजबूर होता है, उसको पता ही नहीं चलता, और बात बात में उसने जो भी वहां उनकी साथी थी औरतें उनको वो सुना दिया पंडित जी के साथ क्या हुआ। अब लोग है ना आधी आधी बात सुनते हैं, कई पूरी बात नहीं सुनते। तो एक ने क्या सुना, पंडित जी के खाने में पक्षी की बीट गिर गई, उसकी बजाय पक्षी गिर गया। फिर उसने आगे बात की चार लोगों से, तो उसमें से एक ने सुना पंडित जी के मुंह में पक्षी चला गया। फिर उसने आगे बात की तो एक ने सुना पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। अब ये तो चमत्कार वाली बात हो गई कि पंडित जी के मुंह से पक्षी निकलते हैं। तो पंचायत तक बात पहुंची, तो पंचायत ने सोचा हमारे पंडित जी इतने चमत्कारी हैं, हमें पता ही नहीं, उनको बुलाकर देखना चाहिए कैसे पक्षी निकलते हैं। बुलाया उनको, तो सोचा उन्होंने कि पंचायत में मुझे क्यों बुलाया है, पता चला कि पक्षी निकाल कर दिखाना है। तो उनका दिमाग चला कहाँ से ये बात आई, पक्षी निकाल के दिखाना है। फिर सोचने लगे तो पता चला ये सारी मेरी पत्नी की करामात है। फिर उन्होंने मन ही मन सोच लिया अब क्या जवाब देना है। तो जब उनको कहा कि पक्षी निकाल कर दिखाओ, तो उन्होंने कहा निकल सकता हूँ, लेकिन जो पक्षी निकलते हुए देखेगा वो भी पक्षी बन जाएगा। तो सारे ही चले गए। हाँ, आप कहानी सुनाने का मतलब क्या हुआ? हाँ, कि बात क्या थी और क्या से क्या हो गई। इसीलिए कहते हैं सुनी सुनाई बातों पर विश्वास करना चाहिए, करना चाहिए नहीं करना चाहिए, लेकिन हम करते हैं। कहते हैं भगवान ने दो कान दिए हैं, एक कान से सुनो और दूसरे कान से निकाल दो, लेकिन निकलती नहीं है, क्योंकि दोनों कानों के बीच में आता है दिमाग, वो शुरू हो जाता है। हाँ अच्छा, ये ऐसे भी है, ये ऐसे भी करते हैं, हमने तो ऐसा सोचा भी नहीं था, जो भी है। और सोच सोच के हम फिर उसको दूसरे कान से निकालने की बजाय मुंह से निकालते हैं। तो इसको हम कहेंगे समाने की शक्ति की कमी। लेकिन एक राजयोगी में गंभीरता का गुण होता है, और इसीलिए अगर कोई राज की बात है और हमें नहीं कहनी चाहिए तो हम कभी भी वो बात नहीं कहते, और अगर कहनी भी है तो फिर सही व्यक्ति को सही समय पर सही स्थान पर हम वो बात कहते हैं, ताकि संबंधों में कड़वाहट ना आए। उसके परिणाम तो बुरे होते हैं ना संबंधों में। आज एक सास बहू है, सास बहू को कुछ कहती है तो वो चुपचाप सुनती है, लेकिन जो पड़ोस की बहू है, वो उसकी सहेली है, उसको जाकर सुनाती है, हाँ मेरी सास मेरे साथ ऐसा करती है, मैं कितना सहन करती हूँ, मेरी जगह कोई और होती तो कब की यहाँ से चली जाती या अलग हो जाती, जो भी। फिर वो अपनी सास को कहती है, क्योंकि उसको उस पर रहम आता है। अब ये दोनों सास जब मिलती हैं तो वो सास उसको समझाने की कोशिश करती है कि तुम्हें अपनी बहू के साथ कैसे रहना चाहिए। तो अब उसको समझ में आएगा कि नहीं आएगा कि मेरे घर की बात वहां तक कैसे पहुंची। तो अब संबंध सुधरने वाले या और बिगड़ने वाले हैं। तो अगर समाने की शक्ति कम है, वो गंभीरता का गुण नहीं है हमारे अंदर, तो हमारे संबंध टिकते नहीं। और सागर जो दिखाए हैं, सागर इतना विशाल होता है, इसीलिए सब कुछ इसमें समा जाता है। तो एक योगी का हृदय भी विशाल होता है, इसीलिए हम किसी भी की भी कमियों को सहज समा लेते हैं। और अगर नहीं कहना है तो हम कभी भी उस बारे में बात नहीं करते। ऐसे ही तीसरी शक्ति है परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां मनुष्य के जीवन में साथ साथ चलती हैं। कई बार हमें व्यक्ति परिस्थिति को परखना भी होता है, फिर निर्णय भी लेना होता है, क्योंकि दुविधा में होते हैं। दुविधा में है, करूं कि नहीं करूं, ये सही है कि ये गलत है, उचित है अनुचित है, तो फिर परखना और निर्णय लेना। साथ में अगर हम सही निर्णय लेते हैं तो फिर हम सफल होते हैं, और नहीं तो हमें पश्चाताप करना पड़ता है कि काश उस समय हमने ऐसा नहीं किया होता। तो आप चित्र में देख रहे हैं एक जौहरी है, उसे आभूषणों की परख होती है, उसे पता है खरा सोना है, मिलावट वाला सोना है ना, 24 कैरेट का है या 9 कैरेट का है, असली हीरा है नकली हीरा है, वो विशेष ज्ञान है उसके पास, उसी आधार पर वो अपने व्यापार में सफल होता है। एक डॉक्टर है, उसे बीमारी का ज्ञान है, इसीलिए वो बीमारी का डायग्नोसिस करके उसका सही इलाज कर पाता है। एक जज है, उसे कानून का ज्ञान है, इसीलिए वो अपराधी के अपराध को परख कर उसकी सजा या फिर उसके प्रति न्याय क्या करना है वो कर पाता है। तो भाव क्या है, जिस भी क्षेत्र में हम हैं, अगर उससे संबंधित पूर्ण ज्ञान हमारे अंदर है तो हमारे परखने की शक्ति अच्छी होती है और निर्णय शक्ति। हाँ, और अगर हमें आध्यात्मिक ज्ञान है तो आध्यात्मिक ज्ञान हमारी बुद्धि को शुद्ध और स्पष्ट बनाता है। तो जब हमारा मन बुद्धि शुद्ध होते हैं तो जैसे साफ पानी में हम तले तक देख सकते हैं, ऐसे ही शुद्ध मन से हम किसी की भाव भावनाओं को भी परख सकते हैं। क्यों आवश्यक है भावनाओं को परखना? क्योंकि आज इंसान अंदर कुछ और होता है, बाहर कुछ और होता है। जो हमसे वो बाहर में व्यवहार कर रहे हैं, कई बार सचमुच वो हमारे बारे में वैसा नहीं सोचते, पीठ पीछे वो कुछ और होते हैं, तो हमको धोखा मिल सकता है। तो फिर अगर हमने उसके भाव को परख लिया और उससे हमें सावधान रहने की जरूरत है तो हम सावधान रह सकते हैं, या फिर हम ऐसे व्यक्ति को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं वो भी हम समझ सकते हैं। तो आज के समय में ये बहुत आवश्यक है कि हम व्यक्ति को केवल बाहरी व्यवहार से नहीं लेकिन उसकी भावनाओं से हम उसको परख पाएं। फिर निर्णय करने की शक्ति को तराजू से दिखाया है। तराजू के 3 भाग होते हैं, कांटा, डंडा और पलड़ा। सही तौल के लिए कांटा सीधा होना चाहिए, डंडा संतुलित होना चाहिए और पलड़े बराबर होने चाहिए। ऐसे ही सही निर्णय के लिए भी हमारा मन बुद्धि एकाग्र हो, संतुलित हो, निष्पक्ष हो, तब हमारे निर्णय सही होते हैं। लेकिन जब हम उलझन में हैं, बहुत सोच विचार में हैं, स्ट्रेस में हैं, या हम कहेंगे बहुत हमारे मन में चिंता है किसी बात को लेकर के, तो फिर हम सही निर्णय नहीं कर पाते हैं। ऐसे में जब हम योग करते हैं तो हमारा मन शांत होने लगता है और मन एकाग्र भी होता है, और सबसे अधिक लाभ ये होता है कि हमारा मन ईश्वर के साथ जुड़ा हुआ है, तो फिर परमात्मा से हमें अंतर्दृष्टि मिलती है, यानी हम अपने भविष्य को सही रूप से समझ पाते हैं और फिर सही निर्णय भी हम ले पाते हैं। एक बार ऐसे ही एक व्यक्ति था, उसके पास एक गधा था, उसके जीवन यापन के लिए उसने गधा रखा हुआ था। तो गधा मैदान में चल रहा था और वो बैठा था, उसकी नजर पड़ी एक पत्थर पे जो चमक रहा था, उसने उसको उठाया और उसने किसी तरह से उसे अपने गधे के गले में बांध दिया कि सब मेरे गधे को देखेंगे। अब वो उस गधे को लेकर के गया गांव से, तो वो जौहरियों की गली थी, तो एक जौहरी की नजर पड़ी और वो समझ गया ये हीरा है, लेकिन ये गधे वाले को नहीं पता है कि तभी उसने उसको वहां लटका रखा है। तो वो बाहर आया और उसने कहा, ये पत्थर को तुम बेचोगे? तो उसने कहा, ये बिक सकता है? उसने कहा, तो उसने कहा, अच्छा 200 रुपया मुझे चाहिए, आप 200 रुपया दे दो, मैं आपको दे दूंगा। उसने कहा, ये पत्थर का 200 रुपया? नहीं, 100 रुपये में दे दो। उसने कहा, नहीं 100 रुपये में मुझे नहीं देना है। वो आगे चला गया। फिर दूसरे जौहरी ने देखा, वो भी समझ गया ये हीरा है ना, वो बाहर आया, उसने कहा, ये पत्थर को बेचोगे? तो उसने कहा कि 200 रुपया चाहिए। तो उसने तुरंत 200 रुपया निकाला और उसको दिया, क्योंकि उसको पता था कि हीरे की कीमत तो बहुत ज्यादा है। अब वो पीछे वाला जौहरी सोचने लगा, ये मैंने क्या किया, मुझे ले लेना चाहिए था, 200 रुपया तो कोई ज्यादा रकम थी नहीं। वो आया पीछा करते हुए, बोला, लाओ मुझे वो पत्थर दे दो, मैं तुमको 200 रुपया देता हूँ। उसने कहा, लेकिन मैंने तो बेच दिया। तो उसने कहा, कितने में बेचा? बोला, 200 रुपये में। बोला मूर्खो तुम, वो हीरा था तुमने 200 रुपए में बेच दिया। तो उसको देख के बोलने लगा, फिर मेरे से बड़े महामूर्ख तो तुम हो, मेरे को तो नहीं पता था कि मुझे हीरा है, तुमको तो पता था हीरा है और तुमने 100 रुपए के पीछे हीरा छोड़ दिया। तो सही समय पर वो निर्णय नहीं कर पाया तो एक बहुमूल्य हीरा उसके हाथ से निकल गया। तो ऐसे ही अगर हम सही समय पर निर्णय नहीं कर पाते तो ऐसे अमूल्य अवसर हमारे हाथ से निकल जाते हैं और फिर हमें पछताना पड़ता है। और पांचवी शक्ति है सामना करने की शक्ति। तो हमारे जीवन में समस्याएं तो आती ही रहती हैं। तो यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं, हाँ, कोई प्रिय जन की मृत्यु हो जाती है और अगर वो असमय मृत्यु हो गई, कोई दुर्घटना में मृत्यु हो गई, तो कई लोग इतने दुखी होते हैं कि दिनों महीनों तक या वर्षों तक समाने नहीं हो पाते। जैसे कि उस व्यक्ति के जाने के साथ उनकी जिंदगी भी खत्म हो गई। और हम अगर दुखी होते हैं तो क्या होता है, उस आत्मा को भी हम दुख पहुंचाते हैं। लेकिन एक ज्ञानी व्यक्ति क्या समझता है, ये शरीर की मृत्यु है, आत्मा तो अजर अमर अविनाशी है, आत्मा की मृत्यु तो होती नहीं। तो वो जब तक उसका हमारे साथ कर्म संबंध था, हमारे साथ थी, अब वो कर्म संबंध समाप्त हो गया तो जहां उसको जाना है आगे, वो वहां गई है आत्मा, तो अब उसकी आगे की यात्रा के लिए हम उसे शुभ भावना देते हैं, शांति का दान देते हैं, क्योंकि जो चला गया वो लौट कर आने वाला तो नहीं है। ये भी सच्चाई है कि जो आत्मा चली गई वो वापस तो नहीं आएगी। तो जैसे कहा कि यदि हम दुखी होते रहते हैं, रोते रहेंगे, तो हम उस आत्मा को भी वो दुख पहुंचा रहे हैं। हमारा जो भी कर्तव्य है हम भले ही उसके लिए पालन करें। एक बार ऐसे ही एक फैमिली थी, उनका एक इकलौता बेटा, जवान बेटा था और दुर्घटना में उसकी मृत्यु हो गई। अब उसकी मृत्यु के बाद कोई दिन ऐसा नहीं जो वो उसकी याद में रोते नहीं, महीनों हो गए। एक दिन वो बेटा अपने पिता के सपने में आया तो पिता ने क्या देखा कि बेटा फरिश्तों की सभा में है और सभी के हाथ में कैंडल है, वो जल रही है, लेकिन बेटे के हाथ में जो कैंडल है वो बुझी हुई है। तो उन्होंने पूछा, बेटा तुम्हारी कैंडल क्यों बुझी हुई है? तो कहा, पिताजी मेरे ये दोस्त बहुत अच्छे हैं, मेरी कैंडल जलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आप दोनों रोज रोते हैं, आपके आंसू गिरते हैं और मेरी कैंडल बुझ जाती है। तो मैं आपको कहने आया हूं कि अगर आप रोते रहेंगे तो मेरी कैंडल कभी भी चलेगी नहीं, आप रो मत। तो उसको समझ में आया कि हमारे रोने से हमारे बेटे के भविष्य पर असर आ रहा है। फिर उस दिन से उन्होंने रोना बंद किया। तो इसीलिए हम जब भी उनको याद करें, अब याद तो आती है, जो व्यक्ति इतने वर्षों तक हमारे साथ रहता है याद आती है, लेकिन कैसे याद करना है, दुखी होकर के नहीं, लेकिन हम उनको दुआएं दे कि वो आत्मा जहां भी है वो खुश रहे, वो सुखी रहे, वो स्वस्थ रहे, इस तरह से हम उसको याद करें। फिर और भी कई परिस्थितियां आती हैं, मानो कोई व्यापार में घाटा हो गया, कोई असाध्य बीमारी हो गई, अनहोनी हो जाती, कहीं आग लग जाती है, चोरी हो जाती, क्या क्या जिंदगी में घटनाएं होती रहती हैं। तो फिर एक योगी कर्म की गति को जानता है, उसे पता है कि जो भी परिणाम हमारे सामने आ रहे हैं उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, बिना कारण के कोई परिणाम नहीं होता है। तो इसीलिए हमारा धैर्य बना रहता है कि जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है ये हमारे ही कर्मों का परिणाम है। तो फिर हम भविष्य में अपने कर्मों के प्रति सावधान हो जाते हैं। और जैसे कल भी हमने समझा कि अगर कुछ हमारा बुरा हो रहा है तो उसमें कुछ ना कुछ हमारा भला भी है, हर बात के दो पहलू होते हैं। तो कहा गीता में, जो हुआ था वो अच्छा था, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होगा वो और भी अच्छे से अच्छा होगा। तो इस पर एक बोध कथा आती है कि एक बार एक राजा का बहुत बुद्धिमान मंत्री था और वो उसे अपने साथ रखता था, लेकिन एक बार राजा की उंगली कट गई तो उसने अपने मंत्री को दिखाया, लेकिन मंत्री ने सहानुभूति देने की बजाय, ज्ञानी था वो, तो उसने कहा महाराज जो हुआ वो अच्छा हुआ। तो राजा को गुस्सा आ गया कि मेरी उंगली कटी, अच्छा कैसे हुआ। तो उसने गुस्से में आकर के उसको जेल में बंद करवा दिया। अब राजा को शिकार खेलने का शौक था, तो थोड़े दिन में वो शिकार खेलने के लिए जंगल में जाता है और शिकार का पीछा करते करते दूर घने जंगल में पहुंच जाता है और वहां पर कबीले के लोग रहते थे। तो वो कबीले के लोग उस दिन देवी को मनुष्य की बलि चढ़ाने के लिए किसी मनुष्य को ढूंढ रहे थे, तो राजा को पकड़ लेते हैं। अब वो राजा पकड़ा जाता है, उसको समझ में आता है कि मुझे बलि चढ़ाने के लिए पकड़ा गया है, तो वो समझाने की कोशिश करता है मैं राजा हूं, आप मेरी बलि चढ़ाओगे। तो कहते हैं राजा तो सर्वोत्तम होता है, राजा जैसी बलि पाके तो हमारी देवी बहुत प्रसन्न होगी, हम आपको नहीं छोड़ेंगे। और वो क्या करते हैं, उसको ले जाते हैं अपने मंदिर में और वहां वो पुजारी देखता है, क्योंकि बलि का नियम होता है उसका कोई अंग भंग नहीं होना चाहिए, तो वो देखता है इसकी तो उंगली कटी हुई है। तो उसने कहा अरे देवी ये बलि स्वीकार नहीं करेगी, देवी नाराज हो जाएगी, इसको छोड़ दो। तो राजा छूट जाता है। अब उसे याद आता है कि मंत्री जी ने कहा था जो हुआ वो अच्छा हुआ, आज उंगली कटी हुई थी इसीलिए बलि चढ़ने से बच गई, नहीं तो कोई बचाने वाला भी नहीं था। तो वो जैसे ही अपने राज्य में पहुंचता है, वो मंत्री को जेल से बाहर करके और सारी घटना बताता है, कहता है मंत्री जी मुझे माफ कर दीजिए, मुझे आज समझ में आई ये बात, लेकिन मैंने आपको जेल में बंद किया, ये तो आपके साथ बुरा ही हुआ। तो उसने कहा नहीं महाराज, ये भी अच्छा हुआ, क्योंकि मैं जेल में नहीं होता तो मैं आपके साथ जाता, और मैं आपके साथ होता तो आपकी बजाय मेरी बलि चढ़ जाती, क्योंकि मैं तो पूर्ण मनुष्य था, तो आप भी बच गए और मैं भी बच गया। तो देखने में घटना कैसी थी, दोनों के लिए बुरी थी, लेकिन उसमें दोनों के लिए भला छुपा हुआ था। तो हमारी जिंदगी में कई बार ऐसा होता है कि बहुत बुरी बातें, बुरी घटनाएं हमारे सामने हो रही हैं, लेकिन भविष्य में कहीं ना कहीं उसके पीछे हमारा भला ही छुपा है, जो हमें बाद में समझ में आता है। हाँ, आप में से कोई है जिन्होंने ऐसा अनुभव किया अपने जीवन में, तो हाथ उठा सकते हैं। हाँ हाँ, उठाइए उठाइए, देखो कितने हैं जिन्होंने ऐसा अनुभव किया। देखने में लगता है बहुत बुरा हो रहा है, लेकिन बाद में पता चलता है कि इसमें ही मेरा अच्छा था। और एक योगी ये समझता है कि भगवान मेरे साथ है, क्योंकि भगवान को याद करते हैं तो अपना साथी अनुभव करते हैं उसे, और जब सर्वसमर्थ हमारा साथी है, सर्वशक्तिवान हमारा साथी है, तो हम निर्भय हो जाते हैं। दुनिया में भी देखते हैं ना, किसी के साथ सिक्योरिटी गार्ड होते हैं तो वो कितने निर्भय होते हैं कि हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। तो भगवान तो परम रक्षक है और समर्थ है, तो फिर कोई भी परिस्थिति आती है उसका सामना करना हमारे लिए आसान हो जाता है, हम निश्चिंत होते हैं, क्योंकि हम अपनी जिम्मेवारी उसको सौंप देते हैं। महाभारत में एक प्रसंग आता है कि जब अभिमन्यु को चक्रव्यूह में मार दिया गया और अर्जुन को पता चला तो उसे बहुत गुस्सा आया, तो उसने प्रतिज्ञा की कि अगले दिन सूर्यास्त से पहले अगर मैंने जयद्रथ का वध नहीं किया तो मैं खुद को ही जिंदा चिता में जला दूंगा। जब कृष्ण ने सुना तो उन्होंने बोला अर्जुन ये क्या प्रतिज्ञा कर ली तुमने, जयद्रथ को मारना इतना आसान नहीं है, और वो नहीं मरा तो ये अर्जुन तो खुद को जिंदा चिता में जला लेगा। फिर उस रात को सब शिविर में विश्राम कर रहे थे, लेकिन कृष्ण जाग रहे थे। क्यों जाग रहे थे, क्योंकि अगले दिन का युद्ध इस तरह से हो कि अर्जुन की विजय हो, लेकिन देखा अर्जुन सो रहा है, तो उन्होंने उठाया अर्जुन को, अर्जुन तुम सो रहे हो, तुमने प्रतिज्ञा की, तुमको याद नहीं तुमने क्या प्रतिज्ञा की है। तो उसने कहा माधव मुझे याद है, लेकिन मुझे ये भी पता है आप मेरे लिए जाग रहे हो, आप मेरी चिंता कर रहे हो, तो मुझे चिंता करने की क्या जरूरत है। हाँ, तो भगवान को हम अपनी चिंताएं सौंप सकते हैं और वो हमारी सामना करने की शक्ति को बढ़ा देता है। फिर है सहयोग करने की शक्ति। आज हम आपस में आत्मा रूप में भाई भाई हैं, ये हम राजयोग में समझते हैं। चाहे हम किसी भी धर्म के हैं, जाति के हैं, भाषा के हैं, देश के हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। हमारे देह के धर्म भाषा जाति अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन आत्मिक रूप में हम सब भाई भाई हैं, एक पिता की संतान है, एक ही परम धाम से इस सृष्टि पर आए हैं और इसीलिए ये विश्व एक परिवार है। जैसे हम वैश्विक एकता की बात करते हैं तो कैसे पूरा विश्व एक परिवार है, हमारी संस्कृति में वसुधैव कुटुंबकम कहा गया, तो ये वसुधा एक परिवार है, ये हम सही अर्थों में समझ पाते हैं। और इसीलिए जहाँ सहयोग होता है वहाँ एक और एक दो नहीं, एक और एक क्या होते हैं, 11 होते हैं। तो हम 2, 4, 6 लोगों का परिवार मेरा परिवार है, इनके लिए ही मुझे सहयोगी बनना है, इनके लिए ही मेरी शुभ भावना है, नहीं। विश्व की सभी आत्माएं ही हमारे भाई बहन हैं और उनमें किसी को हमारे सहयोग की जरूरत है और हम दे सकते हैं तो हम अवश्य वो सहयोग देते हैं। और जहाँ सहयोग है वहाँ बड़े बड़े कार्य भी सहज संभव हो जाते हैं। आप चित्र में देख रहे हैं, जब गोकुल पर बाढ़ का संकट था तो श्री कृष्ण ने एक उंगली पर गोवर्धन पर्वत उठाया, तो केवल कृष्ण की उंगली नहीं थी लेकिन गोप गोपियों की भी उंगली का उसमें सहयोग था और गोकुल की रक्षा हुई। तो यहाँ भी परमात्मा जब विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं, ये वास्तव में कोई मिट्टी का पर्वत उठाने वाली बात नहीं है, लेकिन ये परमात्मा के कार्य का यादगार है कि जब परमात्मा अवतरित होकर इस धरा पर विश्व परिवर्तन का कार्य करते हैं तो वो कोई जादू मंत्र की छड़ी घुमाकर संसार का परिवर्तन नहीं करते, लेकिन उनके साथ अनेक आत्माओं के तन मन धन का सहयोग होता है। तो कई बार कई भाई बहने पूछते हैं कि ये इतना बड़ा ईश्वरीय विश्वविद्यालय कैसे चलता है, इसका खर्चा कैसे चलता है। तो कैसे चलता है, सभी का जो भी इस विद्यालय में आते हैं, यहाँ की शिक्षाओं से लाभ लेते हैं, उनका ही सहयोग होता है और सहयोग से ये कार्य बहुत सहज रीति से चलता है। कई बार फिर हम ये भी सोचते हैं कि इतनी बड़ी दुनिया में अगर हमने कहीं कुछ परिवर्तन कर लिया तो क्या फर्क पड़ने वाला है, क्योंकि ये कलयुग तो इतना बड़ा है, ये कलयुग बदल कर क्या सतयुग हो सकता है। तो फर्क पड़ता है, एक एक के परिवर्तन से, जैसे हम कहते हैं बूंद बूंद से तालाब होता है। तो जब हम परिवर्तन करते हैं तो हमारे से अनेकों को प्रेरणा मिलती है और हम हिम्मत रखते हैं तो मदद भी मिलती है। कहते हैं हिम्मत ही मर्दा मददे खुदा, हिम्मत का एक कदम हम उठाएंगे तो 1000 कदम भगवान का सहयोग हमें मिलता है। एक बार ऐसे ही एक जंगल में आग लगी, सभी जानवर भागने लगे, एक चिड़िया थी वो तालाब पर जाकर चौंच में पानी भरकर लेकर आ रही थी और वो डाल रही थी, तो जंगल के जानवर हंसने लगे, चिड़िया तुम क्या समझती हो, तुम्हारे ये चौंच भर पानी से जंगल की आग बुझेगी। तो उसने कहा कि मुझे पता है नहीं बुझेगी, लेकिन भविष्य में जब भी इस जंगल की आग का जिक्र होगा मेरा नाम भागने वालों में नहीं होगा, मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। तो जब हाथियों ने सुना तो उन्होंने कहा अरे इतनी छोटी चिड़िया इतनी हिम्मत कर सकती, हम तो आग बुझा ही सकते हैं। तो उन्होंने क्या किया, सूंड में पानी भर के आग पे डालना शुरू किया और वो आग बुझ गई। तो किसने बुझाई, किसने बुझाई, हाथियों ने बुझाई, चिड़िया ने बुझाई। तो प्रेरणा चिड़िया से मिली, बुझाई हाथियों ने। तो फिर वो उसके प्रयास ने उनको उनको उसकी हिम्मत ने उनको हिम्मत दी और उससे वो कार्य हो गया। तो जीवन में भी, हमारे जीवन में भी हम देखते हैं कि कोई भी एक क्रांति जब शुरू होती है तो कोई एक व्यक्ति निमित्त बनता है। आज भारत देश आजाद हुआ, महात्मा गांधी को वो संकल्प आया जब अंग्रेजों ने अफ्रीका में उनका अपमान किया, उन्हें ट्रेन से धक्का दे दिया, तो उन्होंने उसी समय संकल्प किया मुझे भारत को आजाद करना है। और धीरे धीरे पूरा देश उनके साथ जुड़ा और भारत आजाद हुआ। यहाँ भी शिव बाबा ने प्रजापिता ब्रह्मा को अपना माध्यम बनाया। ब्रह्मा बाबा को आप देख रहे हैं जो विद्यालय के फाउंडर थे, उस समय वो बिल्कुल अकेले थे, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी, दृढ़ता रखी, तो आज ये ईश्वरीय कार्य इतना विशाल रूप ले चुका है। तो आने वाले समय में धीरे धीरे और भी विश्व की आत्माएं इसमें सहयोगी बनती जाएंगी और ये विश्व परिवर्तन होगा या नहीं होगा? होगा। तो ये सहयोग की शक्ति इतनी महान शक्ति है। फिर सातवीं शक्ति है विस्तार को सार में लाने की शक्ति, और आठवीं शक्ति है समेटने की शक्ति। ये दोनों शक्तियां भी हमारे जीवन में साथ साथ चलती हैं। कभी हमें विस्तार करना होता है और कभी हमें समेटना भी होता है, तो दोनों ही हम कर सकें। तो यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं कि जैसे कछुआ है, वो एक ऐसा प्राणी है जिसके शरीर पर एक कठोर खोल होता है, वो हमेशा अपने आप को उसमें सुरक्षित रखता है। जब उसे खाना होता है, चलना होता है, तो अपने अंग बाहर निकलता है और वो काम पूरा होने के बाद फिर से अपने खोल के अंदर। ऐसे ही योगी का जीवन होता है। जब हमें कर्म करने हैं तो अपनी कर्मेंद्रियों से हम कर्म करते हैं, अपनी मन बुद्धि को कर्म में एकाग्र करके कुशलता से उसे संपन्न करते हैं, लेकिन जब कार्य संपन्न हो जाता है तो हम विड्रॉ कर सकते हैं, यानी अपनी कर्मेंद्रियों से स्वयं को नियारा करके हम आत्मा में मन को स्थित करते हैं, आत्मिक शांति, आत्मिक सुख, आत्मिक आनंद का अनुभव करते हैं। यहाँ तक कि हम मन को संसार से भी नियारा करके परम धाम में परमात्मा की याद में स्थित करते हैं। और जब मन परमात्मा की याद में होता है तो मन की स्थिति बहुत ऊंची हो जाती है। ये ऐसे ही है जैसे एक एरोप्लेन आसमान में उड़ता है तो उसके नीचे पहाड़ हैं, नदी है, कोई शहर का ट्रैफिक है, उससे उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, वो उसके लिए जैसे है ही नहीं क्योंकि वो इतना ऊंचा उड़ रहा है। तो ऐसे ही जब मन की स्थिति ऊंची होती है तो इन संसार की छोटी बड़ी बातें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती हैं। तो हमारे अंदर वो कला आ जाती है कि जब चाहें हम शामिल हो जाएं और जब चाहें हम न्यारे हो जाएं। तो कमल फूल समान जीवन होता है कि जैसे कमल कीचड़ में उगता है लेकिन कीचड़ से वो परे होता है। और समेटने की जो शक्ति है, आप देख रहे हैं हम यहाँ पर यात्रा का समान देख रहे हैं। तो जब हम यात्रा करते हैं तो कुछ आवश्यक सामान ही अपने साथ लेते हैं। हमारा जीवन भी एक यात्रा है। जब हम जन्म लेते हैं तो ये यात्रा शुरू होती है, और अगर जन्म लिया है तो मृत्यु भी निश्चित है। इसीलिए कहते हैं आया है सो जाएगा राजा रंग फकीर। लेकिन जीवन भर मनुष्य सत्य को भूले रहता है और वो क्या सोचते हैं, जीवन सदा ही है, और इसीलिए मोह माया विषयों में व्यक्ति उलझा रहता है जीवन भर। तो तीन तरह के लोग होते हैं। एक होते हैं जो कहते हैं मेरा सो मेरा, तेरा भी मेरा, ना मेरा तो मेरा है ही, आपका भी मेरा कैसे हो जाए, इस कोशिश में लगे रहते हैं। तो हम उनको कहते हैं स्वार्थी। ना आज दुनिया में इतना भ्रष्टाचार क्यों फैला हुआ है, उसका कारण क्या है, दूसरों का भी छीनने की कोशिश करते हैं। फिर दूसरे प्रकार के लोग होते हैं मेरा सो मेरा, तेरा सो तेरा, आपका नहीं चाहिए लेकिन मेरा तो मेरा ही है, ये हम नहीं देंगे आपको, मेरे पर तो मेरा ही अधिकार है ना। तो एक आम इंसान का स्वभाव ऐसा ही होता है क्योंकि जो कुछ भी उसके पास है उसको उससे मोह होता है, उसको वो छोड़ना नहीं चाहता। और तीसरे प्रकार के लोग क्या होते हैं, तीसरे प्रकार के लोग होते हैं आध्यात्मिक, जो सोचते हैं ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, ना इस दुनिया में हम कुछ लेकर के आए और ना ही कुछ हम लेकर के जाने वाले, जो कुछ मिला है यही मिला है और सब यहीं रह जाना है। आज कोई मिलियनर भी क्यों ना हो, एक रुपया भी अपने साथ ले जाएगा? ले जाएगा हाँ, इसीलिए कहते हैं कि कफन में जेब नहीं होती और कब्र में अलमारी नहीं होती। सिकंदर महान के जीवन की घटना है कि जब वो मर रहा था तो उसने अपने वजीर को कहा, मेरे हाथ कोफिन से बाहर निकाल देना। तो उसने कहा, आप ऐसा क्यों चाहते हैं? तो कहा कि मैं अलेक्जेंडर दी ग्रेट, विश्व विजेता सिकंदर कहलाता हूँ, आज मैं मर रहा हूँ तो मैं अपने साथ क्या ले जा रहा हूँ? तो दुनिया को ये पता चले कि इतना बड़ा सिकंदर महान भी खाली हाथ गया। तो इंसान भौतिक रूप से अपनी कोई संपदा अपने साथ नहीं ले जाता, लेकिन फिर भी वो आत्मा अपने साथ कुछ ले जाती है। क्या ले जाती है वो भी हम एक कहानी से समझेंगे कि एक बार एक व्यक्ति के तीन दोस्त थे। एक था जो दिन रात उसके साथ उठता बैठता था, दूसरा था शहर में रहता था कभी दिनों में मिलता था, तीसरा था वो दूसरे शहर में रहता था कभी सालों में मिलता था, लेकिन दोस्ती थी। अब उसके ऊपर किसी ने गलत इल्ज़ाम लगा दिया, यानी उसने हत्या नहीं की थी लेकिन हत्या का आरोप उसके ऊपर आ गया, वो पकड़ा गया और गवाहों से सिद्ध हो गया उसने हत्या की है और उसको उम्र कैद हो गई। तो उसने अपील की जज को कि मुझे क्यों सजा दी जा रही है, मैंने तो कोई अपराध नहीं किया। तो जज ने कहा, देखो तुम अपने पक्ष में गवाह लेकर आओ, जब कोई तुम्हारी गवाही देगा तो ही तुम्हारी सजा बदल सकती है। तो उसने सोचा, मेरे दोस्त हैं वो तो मुझे जानते हैं, मेरी गवाही देंगे। तो उन्होंने सबसे पहले अपने उसी दोस्त को जो दिन रात उठता बैठता था उसके साथ, उसे कहा तुम मेरी गवाही दो। तो उसने कहा, दोस्त मुझे कोर्ट कचहरी से बहुत डर लगता है, तुम मेरे को इस झंझट में मत डालो, तुम्हें कोई और मदद चाहिए तो बता दो, कुछ धन वगैरह की मदद। तो उसने कहा, नहीं गवाही देनी है, अगर गवाही नहीं दोगे तो मेरी सजा में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। पर वो तैयार नहीं हुआ। तो उसको बहुत निराशा हुई कि उसी से सबसे ज्यादा उम्मीद थी। फिर उसने दूसरे से पूछा, तो दूसरे ने कहा कि दोस्त मैं तुम्हारे साथ अदालत तक आ सकता हूँ, लेकिन वो कटघरे में खड़े होकर गवाही देने की मेरी हिम्मत नहीं है। उसने कहा, नहीं गवाही ही देनी है। तो उसने कहा, वो मैं नहीं दे सकता। तो वो भी माना नहीं। अब तीसरे से तो उसे बिल्कुल उम्मीद थी नहीं, क्योंकि वो तो कभी कभी सालों में मिलने वाला दोस्त। उसने सोचा पूछ लेते हैं, पूछा उससे, तो उसने जवाब दिया कि दोस्त मैं आ रहा हूँ, मैं तुम्हारी गवाही दूंगा, और उसने उसकी गवाही दी। तो ऐसे ही आत्मा के भी तीन दोस्त हैं। पहला दोस्त ये शरीर है ना, जीवन भर शरीर और आत्मा साथ में है, लेकिन जब अंतिम समय आता है तो सबसे पहले ये शरीर ही छूट जाता है। फिर दूसरा दोस्त कौन है? हमारे मित्र संबंधी, वो अदालत तक यानी शमशान घाट तक हमें अंतिम विदाई देने के लिए आ जाते हैं, और उसके आगे की यात्रा आत्मा को खुद ही करनी है। तो भगवान के दरबार में हमारी सच्ची गवाही कौन देता है? कौन देता है? कौन देता है? हमारे कर्म। जो तीसरा दोस्त यानी दूर का दोस्त है, कर्मों पर हमारा ज्यादा ध्यान नहीं होता है, लेकिन कर्म ही हमारे साथ जाते हैं। और कौन से कर्म जाते हैं आप देख बताए ना, लगेज हम उतना ही लेते हैं जितना जरूरी है। तो आत्मा के साथ भी सिर्फ पुण्य कर्मों की पूंजी जाती है, पाप कर्मों का हिसाब उसे यही चुकता करना पड़ता है, क्योंकि हम यात्रा में कोई भी इल्लीगल सामान नहीं ले जा सकते। मानो कोई इल्लीगल सामान ले जाता है, मानो शराब है, ड्रग्स है, कोई भी सोना है, ऐसी चीजें अगर कोई ले जाता है जो गैर कानूनी समझी जाती हैं, तो क्या होता है, वो पकड़ा जा सकता है। पकड़ा जाएगा तो सजा होगी, नहीं तो पेनल्टी लगेगी, और विदेश में भी कस्टम बहुत पावरफुल होती है। तो यहाँ भी इस जीवन यात्रा में भी हम ये सब नहीं ले जा सकते। इल्लीगल चीजें यानी हमारे पाप कर्म हमारे साथ, उसका हिसाब यही देना पड़ता है। और फिर आत्मा पुण्य कर्मों की पूंजी, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी ही अपने साथ ले जाती है, जो उसका भविष्य प्रारब्ध होता है। अनेक जन्मों तक ये अविनाशी कमाई होती है आत्मा की। तो एक ज्ञानी इस राज को जानता है और इसीलिए वो अपना सारा समय केवल धन कमाने में, जो साथ नहीं जाने वाला, केवल संबंधों के निर्वाह में, वो भी साथ नहीं जाने वाले, या केवल अपने शरीर के निर्वाह में, जो भी साथ नहीं जाने वाला, उसमें ही नहीं देता, लेकिन कुछ समय अपने आत्मनिर्वाह के लिए यानी आत्मिक उन्नति के लिए भी देते हैं, ताकि हम अपने कर्मों को श्रेष्ठ बना सकें, यानी कर्मों पर भी हम थोड़ा ध्यान दे पाएं। और वही हमारी कमाई जो हमारे साथ आगे भी जाने वाली है। तो इस तरह से योग अभ्यास से हमें ये जो शक्तियाँ प्राप्त होती हैं, जो गुणों का विकास हमारे अंदर होता है, उससे पांच विकारों पर, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, इन सब पर हमारी विजय होने लगती है। काम विकार पर जीत होती है क्योंकि हमारी दृष्टि वृत्ति आत्मिक हो जाती है। आत्मिक दृष्टि वृत्ति शुद्ध दृष्टि वृत्ति है, आत्मा तो स्त्री पुरुष नहीं होती, तो हम देह की सीमाओं से ऊपर उठते हैं, तो काम विकार पर जीत होती है। क्रोध पर जीत होती है क्योंकि हमारे अंदर प्रेम, दया, क्षमा, करुणा के गुण आते हैं, शांति की शक्ति आ जाती है, तो सहन शक्ति बढ़ जाती है। लोभ पर जीत होती है क्योंकि हम स्वार्थी नहीं, परोपकारी बनते हैं और संतुष्टता का गुण आता है हमारे अंदर। और मोह पर जीत होती है क्योंकि हमें पता है सब कुछ विनाशी है, कुछ हमारे साथ जाने वाला नहीं, तो हम जो भी प्रयोग करते हैं उसे ट्रस्टी भाव से, अनासक्त भाव से हम उसे प्रयोग करते हैं। और अहंकार पर जीत होती है क्योंकि निमित्त भाव आ जाता है, हमें पता है कि करण करावन हार परमात्मा है, तो उससे फिर हमारे अंदर वो नम्रता का गुण आता है और इस तरह से हमारा स्व परिवर्तन होने लगता है, और जिससे हम वर्तमान में भी जीवन में सुख शांति का अनुभव करते हैं और परमात्मा के भी इस विशाल विश्व परिवर्तन के कार्य में हम सहयोगी बन जाते हैं। पर ये एक दिन में नहीं होता है कि ओवरनाइट हमारे अंदर ये परिवर्तन आ जाएगा या शक्तियां आ जाएंगी, लेकिन जब प्रतिदिन हम योग का अभ्यास करते हैं तो हम स्वतः ही इन शक्तियों का अनुभव करने लगते हैं। तो ये हैं राजयोग के द्वारा प्राप्त होने वाली शक्तियां और गुण। ओम शांति।